मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 22 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक सूचना जो लंबे समय से मैंने आप लोगों को नहीं दी है, और चूंकि ये बात नई नई सी ही है तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इससे पहले नहीं सुना हो। हालांकि एकदम नई नहीं है, पहले भी यह सूचना आप लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन इस बीच में बहुत से नए स्टूडेंट जुड़ते चले जाते हैं तो उनके पास यह सूचना नहीं होगी। तो मैं ये एक सूचना देना चाहूंगा, और वह सूचना यह है फ्रेंड्स कि यहां भोपाल में जो एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस लगती हैं तो उसका अब जो बैच शुरू होना है उसकी डेट पहले से डिक्लेयर की जा चुकी है और उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो मैं वह डेट आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा। अब जो क्लासेस होंगी फ्रेंड्स वो 21 अक्टूबर से शुरू होंगी जो 4 नवंबर तक चलेंगी। 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये 15 दिन की क्लासेस हैं, और अभी जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए एक सुविधा यह है, या कह लीजिए लाभ यह है कि उन्हें 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 2000 रुपए की उन्हें छूट प्राप्त होगी। तो मित्रों ये छोटी सी सूचना है। अब आइए मैं आज के विषय के बारे में आपको बता दूं। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि ठीक इससे पहले के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने उत्तर लेखन के अंतर्गत एक उत्तर को एक्सप्लेन किया था। मैंने एक प्रश्न पढ़ा था और उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे उसकी मैंने व्याख्या की थी, उसके उत्तर की व्याख्या की थी कि कैसे उसका डिमार्केशन करेंगे, कैसे उसे समझेंगे, फिर कैसे आप अपने उत्तर को लिखने के लिए पॉइंट्स जुटाएंगे। वहां बात मैंने खत्म की थी। तो बात खत्म होने के बाद मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, अभी बात खत्म तो हो गई है लेकिन पूरी नहीं हुई है, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और आप लोगों से करनी चाहिए। तो दोस्तों यही सोच करके मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में अब इस बात की चर्चा करने जा रहा हूं कि आपके अंदर जो आंसर राइटिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए वो आएगी कहां से। देखिए उत्तर लिखना कोई स्ट्रेट काम नहीं है, मतलब कोई स्केलेटन वाला हिसाब किताब नहीं है, कोई ऊपरी सतही काम नहीं है, कोई कंकाल नुमा काम नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप उस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, आउटलाइन खींच देंगे, रेखाएं खींच देंगे और उत्तर तैयार हो जाएगा। मित्रों इनफैक्ट यह आपकी कैपेसिटी होती है, यह आपकी क्षमता होती है कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। सामान्य सी बातें तो आपको बताई जा सकती हैं, जो मैंने बताने की कोशिश भी की है कि कैसे आप किसी प्रश्न को समझेंगे। अगर आप मेरे इससे पहले के डेली ऑडियो लेक्चर को गहराई से सुने तो आपको यही लगेगा कि मैंने उसमें यही बताया है कि आप प्रश्न को समझेंगे कैसे, और प्रश्न को समझने के बाद आप कौन कौन से पॉइंट्स नोट कर लेंगे ताकि आप भटकाव से बच जाएं और फिर उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आपको अपनी बात सामने रखनी है। सवाल ये है फ्रेंड्स कि वहां तो मैंने बता दिया कि अपनी बात आपको सामने रखनी है, लेकिन कौन कौन सी बातें सामने रखनी है और वो तत्काल आपके दिमाग में आए, आने के बाद फिर आपके कलम से वो अक्षरों के रूप में फटाफट उतरते चले जाएं, ये कैसे संभव होगा, क्या ये उतना आसान है। इसे ही मैंने यहां कहा है उत्तर लिखने की क्षमता, कि लेखन की क्षमता आप में है या नहीं। तो मित्रों क्या आपको लगता है कि मैं बता दूं और वो क्षमता आ जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है कि आपको यदि मैं तैरने के नियम बता दूं तो क्या आप तैर लेंगे, नहीं तैर सकेंगे। नियम अलग बात है, नियम हमें तैरने की शुरुआत करने की एक पद्धति बता देंगे, हम शुरुआत करेंगे और बीच बीच में उसका इस्तेमाल भी करते रहेंगे, लेकिन वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। लेकिन मित्रों यहां मैं जो आंसर राइटिंग के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूं वो प्रैक्टिस के बारे में नहीं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि मैं आपसे कह दूं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज आप कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो लिखें ही लिखें, मैं वो बात बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपको आपके सामने उत्पन्न आप कह लीजिए एक डिफरेंट किस्म की चुनौतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, या कह लीजिए कि चुनौती के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों वो चुनौती ये है कि जो उत्तर लिखने की क्षमता है वह मूलतः आपके पढ़ने के ढंग पर निर्भर करती है। मित्रों, इसे मैं रिपीट करूंगा और अंडरलाइन भी करना चाहूंगा, वह आपके पढ़ने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं हुआ तो मान करके चलिए कि सिविल सर्विस में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर आप उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जो वे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, सिविल सर्विस में कुछ प्रश्न, जैसे अगर हम 20 प्रश्न एक क्वेश्चन पेपर में, लगभग कभी 20 कभी 25 इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अगर 20 होते हैं तो हर क्वेश्चन 200 शब्दों का हो जाता है, और अगर 25 होते हैं तो फिर वो 150-150 शब्दों के कर देते हैं, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, जब वो क्वेश्चन 20 या 25 होते हैं तो उनमें से मान करके चलिए कि 5-6 क्वेश्चन स्ट्रेट किस्म के आने लगे हैं, जो सीधे सीधे होते हैं। तो जो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप लेकर के कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि उसी पद्धति से आप अभी तक उत्तर लिखते आए हैं। देखिए, हम लोग जब प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यहां तक कि जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी जो परीक्षा पद्धति है वो हमसे इसी तरह से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछती है और हम उनके उत्तर भी दे आते हैं। और स्ट्रेट क्वेश्चन चूंकि पूछे जाते हैं तो हम जो पढ़ाई भी करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से करते हैं। और मजेदार बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर हमें किताबों में ज्यों के त्यों मिल भी जाते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से रट लें तो आप परीक्षा में न केवल पास ही हो जाएंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। सिविल सर्विस में ये पद्धति काम नहीं करती। जैसा कि मैंने कहा कि 20 में 4-5 क्वेश्चन स्ट्रेट नेचर के होते हैं, लेकिन बाकी का क्या? देखिए, तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको दूसरों से बेहतर करना है, दूसरों से अधिक नंबर लाना है, केवल पास होने का मामला नहीं है। तो जो प्रश्न आपके लिए स्ट्रेट है, 4-5-6 जो भी प्रश्न है, उनकी जो भी संख्या है, वो सबके लिए स्ट्रेट है, तो सब उसे उसी तरीके से लिख करके आएंगे जिस तरीके से आप लिख करके आएंगे। क्योंकि जो स्ट्रेट आंसर होते हैं किसी भी प्रश्न के, तो उसमें फिर आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा लिखने की गुंजाइश रही नहीं जाती है। तो सब एक जैसा ही लिखते हैं, जब एक जैसे लिखते हैं तो लगभग एक जैसे नंबर मिल जाते हैं थोड़े बहुत अंतर से। सही मायने में जो चैलेंज है उत्तर लिखने का, वो बाकी प्रश्नों में है जो थोड़े से घुमावदार होते हैं। घुमावदार भी मैं न कहूं, घुमावदार कहने से आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, बल्कि जिसमें वे आपके अपने अध्ययन की शैली और समझ की गहराई की परीक्षा करते हैं। अध्ययन की शैली का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के, उसे पढ़ा कैसे है, और पढ़ा कैसे है वो तो एक बात है, दूसरा यह है कि आपने उसे समझा कितना है, कहां तक समझा है, कितनी गहराई तक समझा है। देखिए, मैं जब गहराई तक समझा है की बात कह रहा हूं तो आप इसे पीएचडी और एमए और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक मत लेकर के जाइएगा कि उनकी तो बहुत गहराई होती है। नो, नॉट एट ऑल। जैसे एक सामान्य तरीके से एक उथला तालाब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी तालाब में 2-3 फीट पानी है तो आप क्या कहेंगे? गहरा तालाब नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसमें 7-8 फीट पानी है, 8-10 फीट पानी है, तो कहेंगे यार ये तालाब गहरा है, बस तो हमको समुद्र की गहराई नहीं चाहिए, समुद्र की गहराई तो किलोमीटर में हो जाती है। तो मैं उस गहराई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य से थोड़ी सी अधिक गहराई की बात कर रहा हूं। मैं उस गहराई की बात कर रहा हूं जहां किसी भी टॉपिक के बारे में हमारी समझ विकसित होती है। एक तो टॉपिक के बारे में हमारी सूचना विकसित हो रही है, हमें सूचनाएं मिल रही है, तो सूचनाओं को हम याद कर लेते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो सच पूछे तो वो सूचनाएं भी गायब हो जाती हैं। लेकिन जो समझ है वो सूचना से गहरी चीज होती है, वो हमारी चेतना में रच बस जाती है, फिर हम उस टॉपिक पर किसी से भी बहस कर सकते हैं, किसी से डिस्कस कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, चाहे वो जनरल स्टडीज का ही पेपर क्यों ना हो, सब्जेक्ट क्यों ना हो, हमें इस लेवल तक तो जाना ही पड़ता है कि हम उस पर डिस्कशन कर सकें, अदरवाइज फिर वो सतही ज्ञान हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखिए कि अब जब हम किसी एक तो टॉपिक को हमें समझना है और दूसरा ये कि पढ़ने की डिफरेंट स्टाइल से समझना है, तो जो पढ़ने की जो डिफरेंट स्टाइल की जो मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसमें दो चीजें शामिल होती हैं। पहली तो ये बात ये कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इंटरलिंकिंग है, चाहे उस सब्जेक्ट की आपस में ही इंटरलिंकिंग हो, यानी कि आपस में वो सब्जेक्ट जुड़ करके एक सब्जेक्ट बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक जुड़ करके एक बनाते हैं, जैसे अलग अलग फूल मिलकर के एक माला तैयार करते हैं, साथ ही एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ करके इंटरलिंकिंग करता है। मतलब मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस पता लगा कि आपके हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पता लगा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पता लगा वो सोशियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लगा कि पता लगा कि वो इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसे अब आप देखिए दो तरह की इंटरलिंकिंग होगी, एक तो सब्जेक्ट के आपस में ही जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो दूसरी बात है वो ये कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे पढ़ने की पद्धति इस लेवल की होती है, इस तरीके की होती है, तो इसे हम कहते हैं पढ़ने का सही तरीका। मतलब अब आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक पर या उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा तो आप बड़े डिफरेंट तरीके से उसका आंसर दे लेंगे, आपको अब उसके बने बनाए आंसर की तलाश रहेगी ही नहीं, वो तलाश आपके अपने अंदर ही पूरी होगी, आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है। तो मित्रों इसे मैं कहता हूं पढ़ने का ढंग। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जब तक हम अपने पढ़ने के ढंग को ठीक ठाक नहीं करेंगे तब तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला पाना, अच्छे का मतलब है कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा कठिन काम होता है। दोस्तों सच पूछिए तो जो हम लोगों ने 15 दिन की क्लास जो डिजाइन की है कि 15 दिन की क्लासेस लगेंगी और डेली 6 घंटे की क्लास लगेंगी, देखिए 15 दिन तो सुनने में थोड़ा से कम ही लगते हैं कि 15 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा, और लड़के जब यहां आते हैं तो बताते भी हैं कि सर लोग पूछते हैं कि भाई 15 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग लौट करके जाते हैं और बताते हैं तब उनको समझ में आता है कि 15 दिन में अगर होना चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन तक हम लोग सिर्फ इसी पर ही तो बात करते रहते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। हालांकि अगर आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं तो आपको लगेगा यार पढ़ना है कैसे है, पढ़ना कैसे है, 15 दिन तक केवल यही बात होती रहेगी तो क्या बात की जाती होगी। मैं आपको थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि सब्जेक्ट्स को लेकर के बात की जाती है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है आपको, निबंध के लिए कैसे तैयारी करनी है आपको, न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ने हैं, इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट को लेकर के बात होती है। तो जब स्टूडेंट 15 दिन की क्लासेस अटेंड करके जाता है और अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसके पढ़ने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका होता है, और वो इतना परफेक्ट होता है जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उसकी जो दूसरी समस्याएं होती हैं कि वो कैसे कितने दिन तक याद रखे, आंसर राइटिंग कैसे करे, भूलने की समस्या से निजात कैसे पाए, वो प्रश्नों को कैसे समझे कि इसमें पूछा का क्या गया है, और जब आप एक बार समझ लेते हैं कि पूछा क्या गया है तो फिर आपके दिमाग में वो सारी चीजें भी आनी चाहिए कि इसमें लिखा कैसे जाए, आप कैसे उसका विश्लेषण करेंगे, कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे, ये सारी चीजें फिर उसके लिए आसान हो जाती हैं, वो फिर उनके इन चीजों के बारे में सोचता नहीं है क्योंकि वो चीजें होती चली जाती हैं। अब उसके दिमाग का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम उस तरीके से ढल चुका है तो अब उसके लिए दिक्कत नहीं रह जाती है। तो दोस्तों जो मैं खासकर इस डेली ऑडियो के जरिए आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर के यह कि आप यदि सीधे आंसर राइटिंग पर जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, आपको आंसर राइटिंग पे जाना ही है, लेकिन उससे पहले आपको अपने पढ़ने के तौर तरीके को ठीक ठाक करना होगा, और वो तरीका क्या हो सकता है उसके लिए मैंने अभी आपसे थोड़ी सी चर्चा की है। सच पूछिए तो जो डेली ऑडियो लेक्चर का जो पैटर्न है दोस्तों वो इस तरीके का नहीं होता है कि मैं अब आपको बता सकूं कि देखिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विजुअल की जरूरत होती है, और यहां हम ऑडियो के पैटर्न पर बात कर रहे हैं। मित्रों अब इस डेली ऑडियो के लेक्चर, इस डेली ऑडियो गाइडेंस के लेक्चर में, डेली ऑडियो लेक्चर में, गाइडेंस पुराना शब्द है ना तो वो कभी कभी मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, गड़बड़ा जाता है, मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं। इसके साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करूंगा। ये भी आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का है और 2017 का है। इसको थोड़ा सा आप सुनिए और फिर इस पर विचार कीजिए। यह भी बहुत ही जनरल टॉपिक पर है, लेकिन इसके लिए आप उसी तरह से डिमार्केशन तैयार कीजिए कि इसके उत्तर में आप कौन कौन से पॉइंट्स शामिल करना चाहेंगे और आप अपने फैलाव को कहां तक सीमित रखेंगे, राइट। केवल आपको ये देखना है। तो इसके माध्यम से आप थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकेंगे, अपना ये मूल्यांकन कर सकेंगे कि जो आप ने कह लीजिए कि दो लेक्चर इसी टॉपिक पर ऑलमोस्ट उत्तर लेखन पर ही सुने हैं, तो अब चूंकि आप पहला इससे पहले वाला ऑडियो सुन चुके हैं तो अब ये दूसरा ऑडियो जब आप सुन रहे हैं तो आपको चीजें कितनी आसान लग रही हैं। क्या थोड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि पहले में आपको 100% मामला गड़बड़ लग रहा था, तो अब देखिए कि वो जो 100% मामला जो गड़बड़ लग रहा था वो घट करके 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, कुछ कम हुआ या नहीं हुआ। बस केवल आप इतना मूल्यांकन कीजिएगा, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, लेकिन मैं बता भी देता कि आप इस पेपर से आप ये क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि वो करने वाले बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि यार ठीक है बाद में कर लेंगे, और फिर वो बाद में तो कभी आता नहीं है। तो क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं फटाफट। वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। ये इन्वर्टेड कॉमा में है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। यह 250 शब्दों में आपको लिखना है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। द इमर्जेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स पॉइंट्स टू द स्लो बट स्टेडी विथड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इन्वर्टेड में है ये। एग्जामिन द रोल ऑफ द SHGS इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द SHGS। आंसर इन 250 वर्ड्स। मित्रों, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, कुछ पॉइंट्स निकालिए, और मैं अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि बीच बीच में आपको इस तरह से अपना मूल्यांकन करते भी रहना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।